जैन परंपरा में अनादिकाल से वंदनी पूजनी आराधनी स्थान को अलंकृत करने वाले सदा रहे हैं, अनादि से रहे हैं। इनका अभाव काल दोष के कारण से कभी होता है और कभी भी नहीं भी होता है। एक काल दोष माना जाता है, उसके कारण से धर्म का विच्छेद भी माना है, परंतु यह विच्छेद भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र दो क्षेत्रों में ही केवल माना है। बाकी क्षेत्रों में धर्म का विच्छेद अक्षुण्ण रूप से बना रहता, धर्म की श्रृंखला, धर्म की परंपरा अक्षुण्ण रूप से बना रहता, खंडित नहीं होता। जैसे कि विदेह क्षेत्रों में बताया है कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं और अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर सदा बने रहते हैं। इस वक्त हम यहाँ पंचम काल में हैं, किंतु विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर अभी भी हैं। विदेह क्षेत्रों में धर्म का विच्छेद नहीं होता, खंडित नहीं होता धर्म। यहाँ पंचम काल में खंडित भी होता है और उत्पन्न भी होता है। धर्म का खंडित होना और उत्पन्न होने का तात्पर्य ये नहीं कि उस समय श्रावक नहीं रहते, ऐसा नहीं। उस समय कोई सम्यक दृष्टि जीव नहीं रहते, ऐसा भी नहीं। सम्यक दर्शन का विच्छेद होना या सम्यक दृष्टि जीवों का अभाव होने का नाम धर्म विच्छेद नहीं, किंतु सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को मिलाकर के धर्म कहा है। शरबत कहेंगे तो तीनों को मिलाना पड़ेगा, पानी, शक्कर, नींबू का रस। तीनों को मिलने पर ही शरबत नाम आता है। दो मिला करके रखे हैं पानी और शक्कर, कौन शरबत कहेगा उसको? शरबत नहीं मिल रहा है तो तीनों नहीं मिल रहे हैं, ये अर्थ होता है। शरबत कहीं दिख ही नहीं रहा है तो तीनों मिले हुए वस्तु नहीं दिख रहे, ये अर्थ होता है। शरबत नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि पानी नहीं मिल रहा है और शक्कर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। पानी शक्कर, पानी है, शक्कर है, नींबू नहीं है, और शरबत उसी का नाम है जिस पानी में शक्कर और नींबू का रस मिला हो, उसी को शरबत कहते हैं। धर्म वही है जहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो, उसको धर्म कहते हैं। मार्ग वही है जहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों विद्यमान हो, उसी को मार्ग कहते हैं, मोक्ष मार्ग। यदि सम्यक दर्शन को मार्ग कहेंगे तो नहीं जमेगा। मार्ग यानी तीनों का समुदाय, मार्ग कहते ही वहां तीनों होना, शरबत कहते ही कितने होना, तीनों होना, मार्ग कहते ही तीनों होना। नहीं महाराज, दो हो तो भी मार्ग कहलाएगा, सम्यक दर्शन भी धर्म है, ज्ञान भी धर्म है, तो दो तो सब जगह रहते हैं। किसी जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दो तो रहते ही हैं। नरक में भी दोनों को धारण करने वाले हैं कि नहीं है? देवगति में भी देव मिलते हैं, त्रिरंश गति में त्रिरंश भी मिलते हैं। दो को धारण करने वाले तो सब जगह मिल सकते हैं चारों गति में, पर तीन को धारण करने वाले किस गति में मिलते हैं? केवल मनुष्य गति में ही मिलते हैं। तो मोक्ष मार्ग, मार्ग यानी तीनों, मार्ग किस गति में है? मनुष्य गति में है। शास्त्रों में कहीं आता है धर्म का विच्छेद होता है, यानी धर्म कभी लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका मतलब धर्म नष्ट होने का मतलब क्या, तीन का या क्या दो का? तीन का विच्छेद होता। शांति सागर महाराज से पहले तीन का विच्छेद था, शांति सागर महाराज से ही शुरू हुआ, उन्होंने दो की परंपरा को तोड़ दिया, नहीं तीन होना चाहिए। ये क्यों नहीं आता था? चारित्र तो सब शिथिलाचारी थे, संयम धारण करने को कोई साहस ही नहीं करता था, परिग्रह छोड़ने का साहस ही नहीं करते थे, मठ को त्याग कर मठ को छोड़कर उस समय के भट्टारकों ने दीक्षा लेने का साहस ही नहीं किया, मुनि बनने का साहस नहीं किया। और ये साहस न होने के परिणाम स्वरूप धर्म का विच्छेद रहा, धर्म नहीं रहा भारत में। जैनी थे, जैन समाज था, भारत था, भारत देश है, सब कुछ था, लेकिन दो को धारण करने वाले श्रावक तो रहे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आस्था थी उनकी। मुनि मार्ग शिथिलाचार मुक्त होता है, परिग्रह रहित होता है। हमारे गुरु तो दिगंबर गुरु ही होते हैं, दिगंबर गुरु को छोड़ करके मोक्ष मार्ग होता नहीं, धर्म होता नहीं। सब ज्ञान था, सब में नहीं था, कुछ लोगों में जो स्वाध्याय करते थे उनको ज्ञान था और वो तरसते थे ऐसे मुनि का दर्शन करने के लिए, उनके पूजन करने के लिए, उनको आहार दान देने के लिए तरसते थे, लेकिन मिलते नहीं थे। पहली बार ऐसा चमत्कार हो गया कि जिन्होंने गुरु का ही विरोध करके गुरु की बात नहीं मानी, गुरु का ही विरोध किया। वो कहते थे आहार के लिए जब जाओगे 125 ले आना मठ के लिए, ऐसे कहते थे। शांति सागर महाराज ने दीक्षा लेते ही कहा मैं आहार करूंगा, उनको आशीर्वाद भी दूंगा, लेकिन अगर वो देने भी लग जाए, मठ के लिए दे रहा हूं ले जाओ, मैं पैसा छू नहीं सकता। गुरु कहते थे ले आओ और शांति सागर महाराज कहते थे मैं ले नहीं आऊंगा, पैसा छूना मेरा काम नहीं, मंत्र तंत्र करना मेरा काम नहीं, असयमियों की पूजा कराना करवाना मेरा काम नहीं, मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए धर्म स्वीकार कर चुका हूं, मैं अपना कल्याण करूंगा। मुनि दीक्षा ले ली उन्होंने, उनके पास कोई किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं था। आपने कभी सुना है शांति सागर महाराज मंत्र तंत्र करते थे, क्यों नहीं करते होंगे? मंत्र परिग्रह है उनको मालूम था, मंत्र को धारण करेंगे तो हम मुनिव्रत से भ्रष्ट हो जाएंगे, धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, संयम से भ्रष्ट हो जाएंगे, उनको मालूम था। उस शीतलाचार मार्ग को नहीं पकड़ा, जबकि बहुत पहले से आ रहा था, 700 साल हो गए थे, 700 साल की परंपरा को तोड़ने का साहस सबसे पहले अगर किसी ने किया तो शांति सागर महाराज ने किया। तब पुनः तीर्थ की उत्पत्ति हो गई, धर्म की उत्पत्ति हो गई, शीतलाचार मुक्त परंपरा निर्मित हो गई और उस परंपरा में फिर साधु लोग होने लगे। उसी की देन है कि आज विद्यासागर महाराज शांति सागर जी की परंपरा में दिखाई दे रहे हैं, निर्दोष साधु। और ऐसे साधु में ही धर्म जीवित रह सकता है, जो परिग्रह नहीं रखते उनमें मार्ग दिखता है। सम्यक दर्शन ज्ञान दो ही देखना है कि तीन देखना है आप लोगों को? दो ही हो तो वो पूजनीय होते हैं क्या? लेकिन दो की ही पूजा होती थी, दो नहीं एक भी नहीं था उसने। मठ को धारण करेंगे, मठ में बैठेंगे, परिग्रह हो गया और परिग्रह धारण करके कब तक बैठोगे? परिग्रह ही मार्ग हो गया, इससे श्रद्धा हो गई तो सम्यक दर्शन भी नहीं रहेगा। परिग्रह मार्ग नहीं होता, परिग्रह रहित मार्ग पर आस्था करनी चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, वो सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन तब तक सुरक्षित रहता है जब तक कि निर्ग्रंथ मार्ग पर किसी की आस्था और श्रद्धा हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तीनों का नाम मोक्ष मार्ग है और वह निर्ग्रंथ मार्ग है, परिग्रह रहित निर्दोष मार्ग है। निर्दोष निर्ग्रंथ मार्ग पर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है या सग्रंथ मार्ग पर दर्शन करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है? निर्ग्रंथ मार्ग पर श्रद्धा करना श्रावक का सम्यक दर्शन है, किंतु 700 साल तक परिग्रहधारी असयमी जीव की पूजा होती रही मंदिरों में। उस पर भी आस्था, इस पर भी आस्था, उसका भी अभिषेक, इसका भी अभिषेक। जो दो को धारण कर रहे हों उसका अभिषेक हो सकता है, जो दो को धारण करते हों उसकी वंदना हो सकती है, जो दो को ही धारण करते हैं वो क्या नमोकार मंत्र में रहते हैं? जो दो को धारण करते हैं वो पूज्य समझे जाते हैं, जो दो को धारण करते हैं वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं, और यह जैन धर्म निर्ग्रंथ मार्ग है। वस्त्रधारियों का मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग का मतलब निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर उस पर चलना उनका मार्ग है, और उन पर जो आस्था रखते हैं, उनकी जो भक्ति करते हैं वो उपासक कहलाते हैं, पूजक कहलाते हैं, आराधक कहलाते हैं। मार्ग आराधक में नहीं होता है, आराध्य में मार्ग होता है। आराधक में तो आस्था होती है और ज्ञान होता है, विवेक होता है, इतना ही होता है, और क्या होता है। जब तक परिग्रह नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके पास मार्ग आने वाला नहीं है। और परिग्रह छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल बहिरंग परिग्रह छोड़ दिया और सम्यक दर्शन ज्ञान को धारण कर लिया तो वो बहिरंग त्याग भी किसी काम का नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान को धारण करने के साथ जिस वस्तु को हम त्यागते हैं उस वस्तु के प्रति मोह बचना नहीं चाहिए, ये है मार्ग, इसको कहते हैं मार्ग। इस मार्ग का विच्छेद, इस तीर्थ का विच्छेद 700 साल तक इस पंचम काल में शांति सागर महाराज से पहले रहा है। साधु अभी दिखाई देने लगे हैं, उस समय भी श्रावक थे, आपके वंशज थे 700 साल पहले, 200 साल शांति सागर जी से पहले 700 साल तक थे कि नहीं थे? उससे पहले मुनि परंपरा थी, विहार करते थे, पर भारत जब परतंत्र हुआ, परकी लोग आ गए, उस समय से हमारा मार्ग रुद्ध हो गया, अवरुद्ध हो गया, कुंठित हो गया, गुरु जन दीक्षा नहीं ले पाए, और उसी के फल स्वरूप मार्ग अवरुद्ध होने से किसी एक जगह बैठ गए मठ बना करके, मठ बना लिया क्षेत्रों को रक्षण करने के लिए, समाज के रक्षा के लिए मठ बन गए, परिग्रही हो गए, गुरु जन परिग्रही हो गए, उन्हीं मुनियों में से कुछ लोग परिग्रह धारण करके जो वो हो गए वही तो भट्टारक कहलाए। ये हुआ, और अभी भी हैं। अब आपके गुरु कौन, परिग्रहधारी गुरु या निर्ग्रंथ आपके गुरु? निर्ग्रंथ ही हमारे गुरु थे, हमारे गुरु हैं, अनंत काल तक निर्ग्रंथ ही इस धरती पर गुरु रहेंगे। धर्म निर्ग्रंथों में होता है, परिग्रहधारियों में धर्म होता ही नहीं। परिग्रहधारी उपासक कहलाता है, उपास्य नहीं। वस्त्रधारी उपासक कहलाता है, उपास्य नहीं। आराधक कहलाता है, आराध्य नहीं। पूजक कहलाता है, पूज्य नहीं। किंतु जब मुनि महाराज नहीं रहे 700 साल तक, तब उन्हीं परिग्रहधारियों को समाज पूजता रहा, पूजा करता रहा, अष्टक भी करता रहा।
अभिषेक भी करता है, अभिषेक भी करते हैं, ये मठाधिपति,
ये सब होता है। ये क्यों हुआ? तो उन्होंने ज्ञान नहीं दिया आपको, आपको ज्ञान नहीं दिया। हम मुनि के समान ही हैं, ये कहते हैं। तो वस्त्रधारी मुनि के समान कहने से वस्त्र मुनि हो जाएगा। तो आप लोग भी कहो हम भी मुनि के समान ही हैं, पूजा करके जाओ।
मुनि के ऊपर है बोलते हैं, चांदी की भी है उसके पास, तो पीछे
हाँ
चांदी के पीछे है, देख है, सब है, गाड़ी है, वो सम्राट है।
सम्राट अशोक सम्राट। हमको ज्ञानी बनना है, हमारे ही धर्म को तीर्थ को समझना है, कहां सिर झुकाना, कहां नमस्कार करना, कहां नहीं करना, इतना ही ज्ञान आने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। रोज रोज 6 बजे दौड़ के आना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, इसके बिना तो आत्म कल्याण हो ही नहीं सकता। ये जैन धर्म का ऐसा अध्याय है कि ये ABCD से प्रारंभ हो रहा है। पहली कक्षा से पहली भी कक्षाएं हैं आजकल, पहला ऐसा नहीं था। विद्यार्थी को स्कूल भेजते थे तो डायरेक्ट पहली कक्षा में बैठा करके उस साल पास हो गया तो दूसरी कक्षा में, आज उससे पहले क्या क्या बोलते हैं वो LKG और फिर बालवाड़ी, शिशुवाड़ी, क्या क्या है क्या मालूम।
गर्मी पढ़ाने के टाइम नहीं,
हाँ घर में पढ़ने को टाइम नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब बात ऐसी है, माता पिता भी व्यस्त रहते हैं और बच्चा रोता रहता है, उनको छोड़कर काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए उनको दत्तक दे करके आते हैं। 24 घंटे के लिए अपने छोटे बच्चे को वहाँ रख के आते हैं, तुम संभालो हम जरा काम करते हैं, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ लेकिन उसको पकड़ के रखो। वो जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको जैसे पकड़ पकड़ करके बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, बैठ के उधर नहीं जाना अभी, वैसा यहाँ दक्षिण में करना पड़ रहा है। श्रावक बुलाने पर भी नहीं आते, यानी किस अवस्था में है वो, बिल्कुल वो सबसे पहले नंबर का जो बच्चा है, जो रोता है इसलिए काम करने नहीं देता, इसे छोड़ के आए हैं। ऐसा करना, श्रावकों को खींच के लाना पड़ रहा है मंदिर तक, खींच के लाना पड़ रहा है, इतने सोए हुए हैं, चद्दर भी खींचना पड़ रहा है, इतना ही नहीं है, हाथ लगा के उठाना पड़ रहा है, इतना ही नहीं है, खड़े हो जाओ कहना पड़ रहा है, इतना नहीं है, अब जब चलो ये भी कहना पड़ रहा है, हैं? क्या दुर्दशा हो गई है जैन धर्म की, कितना फर्क है चौथे काल में और पंचम काल में, और इसकी किसका परिणाम, 700 साल का रिजल्ट है ये। उत्तर भारत वाले जगते जगते उनको 100, 200, 300 साल हो गए, पूरी तरह से जग गए हैं वो। अब तो महाराज के पास वो आते हैं तो भगाना पड़ता है उनको, जाओ हमारा सामायिक टाइम हो गया, हमारा वो स्वाध्याय का टाइम हो गया, हमको छोड़ करके जरा दूर बैठो, एकांत छोड़ो हमें साधना के लिए, वहां भगाना पड़ता है श्रावकों को, यहां बुलाना पड़ता है। इतना अंतर हो गया है, यहां भी भगाना पड़ेगा लेकिन उसके लिए समय लगेगा, पहला बुलाना फिर बाद में भगाना। और एक बार जुड़ जाते हैं तो फिर भगाना ही पड़ता है, समझदार हो जाते हैं। धर्म ऐसा है कि आपको अपने आत्मा का धर्म, आत्मा को समझ में आ गया कि साधु के बिना मन नहीं लगेगा, आपको शांति तो वही है, मार्गदर्शन वही है, आनंद वही है। संसार में है क्या बताओ, 24 घंटा हाय हाय त्राय त्राय, हाय हाय त्राय त्राय, वो रोता है, वो चिल्लाता है, उसको कुछ समझाना पड़ता है तृप्त करना पड़ता है, बस भरने में लगे रहते। संसार में शांति है क्या? घर में जिंदगी भर आपने संसार किया, जो भी आपकी उम्र है अभी तक, जो यहां अभी एक महीने से आनंद आ रहा है, वो जिंदगी में कभी आया था? यहां 1.5 घंटे पता नहीं लग रहे हैं, इतने आनंद के साथ निकल रहा है। और हमने संसार किया है बहुत, वो संसार को सुखी रखा, परिवार को सुखी रखा, बहुत बातें भी होती रहती हैं, हंसी मजाक मनोरंजन सब होता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां कोई ऐसे शाश्वत मार्ग मिल पाया? शाश्वत हल वहां नहीं है, शाश्वत समस्या का हल वहां नहीं है, वो धर्म से ही है। अब उत्तर भारत के श्रावक धर्म से पागल हो गए, भगाना पड़ता है, आचार्य श्री को फुर्सत नहीं मिलता, वहां 1000-2000 लोग आसपास में दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, भगाना पड़ रहा है, जाओ जरा सामयिक टाइम हो गया। ऐसे क्यों बैठते हैं? आचार्य श्री के पास है क्या? वो क्यों मिठाई बांट रहे हैं क्या? जंतर मंतर कर रहे हैं क्या? बुला रहे हैं, कुछ देने दे रहे हैं क्या? है वहां धर्म है, धर्म में कितनी ताकत है देखो, धर्म सबको आकर्षित करता है, आचरण दिखता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र दिखता है। और ये तीनों जहां नहीं है उनके पास कौन जा रहा है? ये तो सब जगह उपलब्ध है, ऐसे जीव जो दो को धारण करने वाले हैं सब जगह। इंद्र भी दो का धारी है स्वर्ग में, और उनके परिवार देव भी दो के धारी हैं, इंद्र के पास जरूर जाते हैं, लेकिन इंद्र को भी देख करके तृप्ति नहीं मिलती अन्य देवों को। हमारा इंद्र भी ऐसा ही लग रहा है, हम भी ऐसे ही लग रहे हैं, और हमारे अकृत्रिम चैतालय में जिन इंद्र भगवान की जो प्रतिमा है वहां पर भी ये जा रहा है, हमारा मालिक वहां जाकर के अभिषेक करता है, वहां जाकर के झुक जाता है। हम तो जन्मता ये समझते थे कि यही मालिक है हम लोगों का, इंद्र ही मालिक है ऐसा समझते थे। सामान्य जो देव रहते हैं, देव परिवार रहता है, उन इंद्र को तो सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जैसे आप अपने घर में माता पिता को बड़े समझते हैं। बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, माता पिता को एक दिन देखा कि माता पिता जाकर के मंदिर में नमस्कार कर रहे हैं, झुक रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आनंदित होकर के उनकी उपासना में लगे हैं। बच्चे ने जिस दिन इसको देखा, बच्चा क्या समझेगा? इस इनके ऊपर भी कोई है इसलिए यहाँ आ रहे हैं, ये समझता है कि नहीं? ऐसे स्वर्ग में इंद्र से भी बड़ा कौन है? अरहंत भगवान ही तो हैं, और वहां उनके विमान में अरहंत भगवान की प्रतिमा होती है। ये जितने रात को दिखते हैं सूर्य चंद्र विमान नक्षत्र ग्रह तारे, इनमें भी एक एक अकृत्रिम चैतन्य है। अकृत्रिम का मतलब किसी ने निर्मित नहीं किया, वो अनादिकाल से वैसे ही है, वो मध्यलोक में भी हैं, अधोलोक में भी हैं, ऊर्ध्वलोक में भी हैं, सुमेरु पर्वत पर हैं, सब जगह अकृत्रिम चैतालय हैं, इनकी वंदना के लिए देवेंद्र भी आता है और उस देवेंद्र को देख करके देवलोक सोचते हैं इनसे भी बड़े होंगे वो जिन पर रंज मात्र तन पर वस्त्र नहीं, परिग्रह नहीं, अलंकार नहीं, वो हमारे वस्त्र से लदे हुए, अलंकार आभूषण से लदे हुए इंद्र देवता से भी बड़े। उनको जब वो देख करके हर्षित होते हैं तब देव लोग उनके तरफ देखते रहते हैं और इसलिए इधर देखते रहते हैं, भगवान को भी देखेंगे और इनको भी देखेंगे, ये क्या कर रहे हैं। ये नृत्य करने लगे, भक्ति में डूबने लगे, भगवान के गुणगान करने लगे। भगवान का गुणगान करते समय पता चल गया कि भगवान में क्या विशेषता और इनमें क्या विशेषता। इंद्र ये कह रहा है, हे भगवान, आपके पास जो है वो मेरे पास नहीं और जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं। और जो हमारे पास है वो आपके पास आ गया तो हमारे समान ही आप हो जाओगे और जो आपके पास है वो हमारे पास आ गया तो आपके समान हम हो जाएंगे और ऐसा ही हम होना चाहते हैं, इसको तो हम खोना चाहते हैं। जो हमारे पास है वो सबके पास है संसार में, लेकिन जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। और जो वस्तु संसार में कम होती है वो दुर्लभ मानी जाती है और वही वस्तु कम होती है जो अच्छी होती है। अच्छी वस्तु सबसे ज्यादा कम होती है, ये संसार में विशेषता है, और बुरी वस्तु ज्यादा होती है। मुनि महाराज अच्छे हैं क्या, परिग्रहधारी जीव अच्छे? अब आपने किस आधार से कहा बताओ? मुनि महाराज ही अच्छे, परसेंटेज को देख करके कहा, क्वालिटी देख करके कहा कि क्वांटिटी देख करके कहा, क्या देख करके आपने मुनि महाराज को अच्छा कहा? तीन गुण है और आप लोगों के पास 3000 गुण है, काम के नहीं, परिग्रहवाद है, परिग्रहवादी समाजवादी नहीं है, धर्मवादी। यहाँ परिग्रहवाद से संसार बढ़ता है, आकुलता बढ़ती है, दुख बढ़ता है, अशांति बढ़ती है। दुनिया में आज तक जितने भी युद्ध आदि हुए, बड़े बड़े रामायण महाभारत, कुछ साल पहले ये अमेरिका और ईरान इराक, ये जो समय समय पर युद्ध होते रहते हैं, भारत पाकिस्तान, ये क्यों हो रहे हैं, किसके वजह से? ने आशा किसकी है? परिग्रह की है ना। युद्ध सारे के सारे आज तक जितने भी हुए हैं वो एक भी युद्ध धर्म के कारण से नहीं हुआ, परिग्रह के कारण से ही हुआ। रामायण क्यों घटित हुआ? परिग्रह के कारण से। राम अगर शादी नहीं करते राम की शादी नहीं होती तो क्या महाभारत रामायण रामायण युद्ध हो जाता? दशरथ ने शादी नहीं की तो राम भी नहीं होते, तो रामायण कहाँ से होता? राम के नाम से राम आयन, रामायण जो आया राम के आने से आया, राम की कथा लिखी पुराणों में, राम का चरित्र लिखा, उनके जीवन आदर्श को लिखा। ठीक है, दशरथ पैदा हुए थे, राम भी पैदा हुए थे, जो युद्ध हुआ वो राम के विवाह के पश्चात हुआ। अगर विवाह न होता तो दशरथ को भी ये समस्या नहीं आती कि राम को वनवास भेजो। वनवास भेजो क्यों आता? आता ही नहीं था। राम को बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए था, गलती कर दिया विवाह करके। ऐसी दीक्षा लेते, ऐसी मोक्ष जाते, और राम ने दीक्षा लेकर तपस्या करके आज वो सिद्ध परमिष्ठ की अवस्था में है। रत्नत्रय धारण उन्होंने भी किया, दिगंबर दीक्षा उन्होंने भी ली, लक्ष्मण ने नहीं लिया, राम ने दिगंबर दीक्षा ली। किंतु सीता ने देखो तो सही, सीता कितनी विवेकशालिनी थी। सीता ने राम से पहले दीक्षा ली, आरिका दीक्षा। सीता को ये मन में वेदना थी कि ये जो महाभारत हुआ ये मेरे वजह से ही हुआ। ये संसार दुखमय है, अगर मैं नहीं होती, मैं माइनस होती अयोध्या में, तो ये इतना सारा 14 साल की घटना यहां तक ये घटती नहीं थी। ये लंबी घटना है, 14 साल की लंबी यात्रा है, दुख की यात्रा। सीता एक एक दिन आत्मचिंतन करती थी कि ये सब मेरे पाप कर्म के उदय के कारण से चल रहा है, और ये पाप कर्म हमने पिछले भव में कोई न कोई अवश्य बहुत बड़ी घटना से किया है, वो निमित्त बन गया है। प्रतिदिन किसी को दोष नहीं देती थी सीता, अपने कर्मों को दोष देती थी। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा। हमारे जीवन की जो भी घटना घटती है वो घटना अशुभ यदि है तो अशुभ घटना भी कर्म की देन। कोई अच्छी घटना घटती है हमको उससे सुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, तो भी वह कर्म की ही देन है। अच्छी घटना भी कर्म की देन और बुरी घटना भी कर्म की देन। ये कर्म की देन यदि है तो दूसरा कोई ऐसा निमित्त बनता है क्या? दूसरा कोई देता है क्या जबरदस्त निमित्त बन करके? जबरदस्ती निमित्त कोई नहीं बनता। हमारा पाप कर्म का उदय हो तो उस निमित्त को हमारा ही कर्म जोड़ देता है, आओ इधर आओ। कर्म संयोग प्राप्त करता कराता है और इसके बाद हमारे लिए सुख दुख की अनुभूति शुरू हो जाती है। पुण्य का उदय हो तो अच्छे संयोग मिलते हैं, पाप का उदय हो बुरे संयोग मिलते हैं, और इस तरह हमारे जीवन की यात्रा में सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलता रहता है। यह है रेलगाड़ी, झुक 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 सुख दुख झुक झुक, ये यात्रा चलती रहती है। संयोग पुण्य के उदय से होता है और वियोग पाप के उदय से होता है, कोई टाल नहीं सकता। वियोग होने का हमारा पाप कर्म का उदय है तो वियोग होगा, बराबर वियोग होगा। और कब होगा ये कोई गारंटी नहीं, समय कह करके नहीं आता, अशुभ घड़ी भी कह करके नहीं आती और शुभ घड़ी भी बता करके नहीं आती। अभी क्या हुआ है और 10 मिनट क्या होगा, जेब में मोबाइल हो तो घंटी बज गई, नंबर देखा, कान पर लगाया, अभी तो आप इतने आनंद से प्रवचन सुन रहे थे, सुन करके आप उठ करके ही चले गए, आंखों में आंसू बहने लगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? यानी वियोग का समय आ गया तो आप कहीं भी रहो, मंदिर में भी रहो, कर्म फल दे सकता है, घर में भी रहो दे सकता है, रास्ते चलते रहो दे सकता है, कहीं भी छिपके बैठो गहराई में गड्ढे में, कर्म आपको फल देने से चूकेगा नहीं, तुमने जो किया है उसका फल मिलेगा ही। कर्म ऐसा है, जीवन एक कैसेट की तरह है और उसको टेप रिकॉर्डर में लगाया गया है, जन्म के साथ टेप रिकॉर्डर में उस कैसेट को भर देते हैं, कैसेट शरीर है, टेप रिकॉर्डर शरीर है और कैसेट जो है वो आत्मा है, और आप जो बोलोगे उसमें भरेगा, उस कैसेट में भरेगा, आप जो बोलते हैं उसमें भर जाता है, और यदि भरा है तो सुनना ही पड़ेगा, वो जब तक मिटता नहीं तब तक सुनना पड़ेगा। मिटा सकते हैं कि नहीं उसको, अपने कोष में से जो भरा है हम चाहते नहीं, मिटा सकते हैं कि नहीं, मिटा सकते। कर्मों को मिटाने के लिए धर्म शरण है, रत्नत्रय शरण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तपस्या का यह मार्ग पकड़ लेंगे तो हमारे कैसेट को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। फिर लगा करके स्विच लगा करके देखो, क्लीन करो फिर देखो, आवाज आएगी नहीं आएगी, और वो सब कैसेट में जो भरा है वो हमने ही गाया है, हमने अच्छी तरह से गाया हो तो अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग होता है, बुरी तरह से गाया हो तो बुरी तरह से रिकॉर्डिंग होता है, बुरा गाया है तो बुरा ही सुनना पड़ेगा, अच्छा गाया है तो अच्छा सुनना पड़ेगा, और उसको सुनना खुद को सुनना पड़ेगा, दूसरा नहीं सुनता। आप कैसेट और टेप रिकॉर्ड दे दो, जरा सुन लो इसको, वो सुनेगा तो सही, लेकिन क्या वो अपना मानेगा, वो ये आवाज मेरी है, मैंने अच्छा गाया था, यहां चूक गया था, वो अपनी आवाज को उस आवाज को अपनी आवाज मानेगा क्या? ये तो मेरी तो है ही नहीं, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं। आपकी आवाज को सुन करके वो सुखी दुखी नहीं होगा, आपकी आवाज को सुन करके आपको ही सुखी दुखी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत की थी गा गा करके और उसी समय चुप गए, देखो हमने गाना ही नहीं आया, दुख किसको हो रहा है? स्वयं को, जो गाता है उसी को होगा, जिसने कैसेट भरा है उसी को सुनना पड़ेगा और उसका परिणाम उसको ही होगा। कर्म के बिना कुछ होता नहीं है, और सीता की तरह हमें भी चिंतन क्या करने चाहिए इस जिंदगी की यात्रा में, जो भी संयोग वियोग हैं, सुख दुख हैं, ये मेरे कर्म के वजह से होते हैं, दूसरा भी कोई देता नहीं है। हम दूसरे के साथ लड़ बैठते हैं, लड़ने को तैयार होते हैं, किसी ने कुछ गलती कर दिया तो उस पर गुस्सा होते हैं, और गुस्सा करते समय पुनः कैसेट भर गया क्या नहीं कैसा भर गया वो गुस्सा करते हुए भरा, और सुनना तो पड़ेगा, आपके गुस्से को आप ही सुनो। आपके लिए कोई सहयोग नहीं दे रहा है तो आपका पाप कर्म का उदय है, सहयोग दे रहा है तो पुण्य कर्म का उदय है, सहयोग नहीं दे रहा है तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा करने से सहयोग देगा क्या? गारंटी थोड़ी है। गुस्सा करने से भी तभी सहयोग देगा यदि पुण्य बैलेंस में हो। गुस्सा करने पर सहयोग दे गारंटी नहीं है, पुण्य बैलेंस में है तो गुस्सा नहीं भी करोगे तो सहयोग देगा, गुस्सा करोगे तो भी सहयोग देगा। व्यक्ति सुधरता है कभी कभी गुस्सा करने से, लेकिन वो सुधर गया, आपने गुस्सा किया, गुस्सा करने पर सुधर गया मान लो, तो ये आपका पुण्य कर्म का उदय है क्या पाप कर्म का उदय? गुस्सा जो कर रहा है वो भले ही कुछ अशुभ कर्म को बांध लेता है नया नए रूप से, परंतु आपके गुस्से से वो सुधर गया तो उसका पुण्य है। लेकिन उसको सुधारने के लिए आपने तो पाप बांधा ना, वो रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगा? वो अपने को ही मिलेगा सुनने को। हाँ, आप कहते, वो कहता है आपके वजह से ही मैं बच गया, लेकिन आपने गुस्सा किया था, अच्छे के लिए किया, लेकिन बंद तो हुआ है, कर्म का बंद तो हुआ है, वो छूटता नहीं है ना वो। लेकिन वो आकर के आपसे कह रहा है कि मेरे लिए तुमने बहुत अच्छा किया, मैं रास्ते पर लग गया, तुमने गुस्सा जरूर किया लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, तो अच्छा इसके पुण्य के उदय से इनको अच्छा हुआ है, लेकिन वो गुस्सा करने का कर्म बंद जो बंदा बंद गया है वो आपको छोड़ेगा क्या? दूसरे को उपकार करने के लिए अपने ऊपर अपने पैर पर भी थोड़ा पत्थर गिराना पड़ता है। और अंगुली खराब हो गई उसका भोक्ता कौन? हाँ, हमको ही करना पड़ेगा, उसका दर्द हमें ही होगा। तुम तो ठीक हो गए लेकिन मेरे ऊपर पैर पर पत्थर गिर गया। दूसरे को बचाने के लिए जब हम जाते हैं तो हमको कुछ हो जाता है,
दूसरे को बचाना है नहीं,
तो दूसरे को बचाना है क्या नहीं, ये प्रश्न नया आया। तो तीर्थंकर भगवंत ने ये कहा दूसरे को तुम तब बचाने जाते हो जब तुम्हारे दिल में दया है करुणा है, करुणावान ही बचाने जाता है। और तीर्थंकर भगवान ही कहते हैं ऐसे सभी करुणा ही करते बैठेंगे तो मोक्ष कौन जाएगा? तो तीर्थंकर कहते हैं करुणा जब करना चाहिए मैंने कर लिया, लेकिन यही मोक्ष नहीं है, करुणा करना भी मैंने छोड़ दिया, दूसरे की उपकार करना भी छोड़ दिया, मोक्ष जाने के लिए मुझे सेल्फ डिपेंड होना पड़ा, मैं अपने आप में बैठ गया, दूसरे से कोई मतलब नहीं, अब दया भी नहीं और निर्दय भी नहीं। निर्दय होना अज्ञानता से होता है, दया करना राग से होता है, हमको राग द्वेष करना भी ही नहीं, राग भी नहीं करना द्वेष भी नहीं करना, अपने आप में डूब जाना है, तो ये सबसे बड़ा ऊंचा धर्म है। दया करना ऊंचा धर्म नहीं, उससे भी कोई ऊंचा है, वो है अपने आप में प्रतिष्ठित होना और मोक्ष पा लेना, वो सबसे बड़ा धर्म है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु के शुद्ध स्वभाव को धर्म कहते हैं, और उस धर्म को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप में प्रतिष्ठित होना पड़ता है। बैठो, हिलो डुलो नहीं, दुनिया की चिंता छोड़ो, उपकार के भी भाव छोड़ो, अपकार के भी भाव छोड़ो, बैठो, अपने ऊपर ही केवल उपकार करो, अपने ऊपर ही करते जाओ। और अपने ऊपर उपकार का मतलब यह है कि अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाना, उस अपना सबसे बड़ा उपकार है। ये ध्यान में बैठ जाना, हमने कहना छोड़ दिया तो आपका उपकार तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको कहते समय हमारा अपकार अवश्य होता है। होता है कि नहीं होता? सिद्धांत तो है, सिद्धांत तो यही है, इसलिए कहा ना, उपकार आपको करते करते हम अपना उपकार कभी नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं जा सकते।
कहना ही पड़ता
है। हाँ, करुणा भाव जब तक है तब तक तो कहना पड़ेगा। हमको करुणा भाव भी नहीं चाहिए, ऐसा मैंने संकल्प ले लिया, तो भी क्या जबरदस्ती करुणा करने के लिए जाना पड़ेगा? रोज 6:30 बजे क्लास लगता है, मैंने कहा नहीं आऊंगा आज। क्यों महाराज? आज करुणा भी नहीं करना है। तो क्या जबरदस्ती कर सकते आप?
नहीं।
क्या ये संविधान है कि करुणा करके ही फिर? ऐसा कुछ नहीं है, संविधान नहीं बन सकता। हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे महाराज। क्यों नहीं आएंगे?
हमारा पुण्य बहुत कम पड़ रहा है तो आपको नहीं आएंगे। हमारा पुण्य जबरदस्त होता तो आएंगे।
जबरदस्त है इसलिए तो आना पड़ गया। मैं वही राह देख रहा हूँ कि कमजोर कब पड़ेगा और मैं कब निकल जाऊं। इनका पुण्य कमजोर कब पड़ेगा और मैं कब निकल जाऊंगा? ऐसा भी नियोग होता है। वो नियोग होता है, जब तक जो उपकार ले रहा है और उपकार कर रहा है उसका भी कुछ समय होता है, संबंध होता है, वो जुड़ जाते हैं, हो जाता है कार्य। लेकिन ये कार्य करते करते आज तक कोई मोक्ष गया क्या? उपदेश देते समय किसी को केवल ज्ञान हुआ? उपदेश देते समय किसी को मोक्ष हुआ? उपदेश मोक्ष जाने वाला उसने क्या कही किया? हाँ, उपकार के कार्य भी छोड़ दिए, अपकार के कार्य भी छोड़ दिए, अपने ऊपर ही केवल उपकार करने के लिए वो बैठ गए, तब मोक्ष हुआ ना। महावीर भगवान 30 साल तक उपदेश दिया केवल ज्ञान के बाद, 30 साल तक। तो ये उपदेश भव्य जीवों के पुण्य के उदय से उनका 30 साल तक हुआ। लास्ट में उनकी आयु जब समाप्त होने को आई, 72 साल पूर्ण होने थे, उस समय उन्होंने पर उपकार भी छोड़ दिया, त्याग दिया उन्होंने। अब हम दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ाएंगे। किसी ने जबरदस्ती किया भगवान 30 साल तक दिए और आप छोड़ के जा रहे हो, अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे, मानेंगे भगवान? कोई मनवा सकता है? आखिर उन्होंने पावापुरी के सरोवर का शरण ले लिया, एकांत में गए, अकेले में गए और ध्यान में खड़े हो गए, दुनिया को भूल गए, अपनी आत्मा के ऊपर उपकार करना प्रारंभ कर दिया। अपनी आत्मा का उपकार यही है कि ध्यान में बैठ जाओ और दुनिया की चिंता छोड़ दो, इधर उधर कुछ भी स्मरण नहीं करो, आत्मचिंतन प्रारंभ करो, राग द्वेष कुछ न करो, शरीर को हिलाओ डुलाओ नहीं, बाहर जाना ही नहीं, भीतर ही भीतर रहना, भीतर ही भीतर रहना। अंतर मुहूर्त तक आप भीतर रहेंगे तो सारे कर्म आपको छोड़ देंगे और आपकी आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाएगी, निर्वाण को प्राप्त हो जाएगी। सभी तीर्थंकरों ने, सभी मुनियों ने लास्ट में जाकर के यही किया है ना, खिले डुले बिना बैठना ही पड़ता है मोक्ष की सिद्धि के लिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, कहीं भी जाओ ध्यान एक ही रास्ता है मोक्ष जाने के लिए। और इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा महत्व देते हैं ध्यान को, लोग ध्यान को महत्व देते हैं, ध्यान सर्वोपरि धर्म है, ध्यान अंतिम धर्म है, ध्यान के पश्चात कुछ नहीं है, ध्यान से बड़ा धर्म है ही नहीं, उपदेश देना भी धर्म, लेकिन ये व्यवहार धर्म है, वास्तविक धर्म नहीं, निश्चय धर्म नहीं, वास्तविक धर्म ये। तब तक बैठो जब तक कर्म नष्ट न हो। व्यवहार ही है, पुण्य का उदय पाप का उदय ये भी व्यवहार में ही मिलता है, उसका फल भी व्यवहार से हम भोगते हैं, और पाप पुण्य के उदय में लाभ हानि उपकार अपकार ये दया निर्दया ये सब व्यवहार से ही होता है। निश्चय का मतलब ध्यान, निश्चय यानी ध्यान, व्यवहार यानी प्रवृत्ति, ये अर्थ है। व्यवहार वो शब्द ही बता रहा है, व्यवहार लेन देन प्रवृत्ति एक ही बात है, व्यवहार यानी लेन देन प्रवृत्ति, वहां पर स्थिर नहीं है, व्यवहार में व्यक्ति स्थिर नहीं रहता और निश्चय में प्रवृत्ति नहीं रहती, एकदम अपने आप में प्रतिष्ठित होता है, एकाग्र होता है। तो मोक्ष की सिद्धि व्यवहार से होती है कि निश्चय में जाने के बाद होती है? व्यवहार में रहते रहते आज तक एक भी जीव मोक्ष गया हो ऐसा कोई रिकॉर्ड है? नहीं है। व्यवहार से मोक्ष नहीं है, व्यवहार का भी त्याग करके निश्चय का सहारा लेना पड़ता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चय मार्ग ही शरण है लास्ट में, पर वह निश्चय व्यवहार के बिना भी नहीं होता। तो व्यवहार क्या है, ये इसको भी व्यवहार कहा कि मुनि महाराज जो रत्नत्रय धारण कर रहे हैं, कर चुके हैं, ये भी व्यवहार है। हम सम्यक दर्शन को धारण किए हुए हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, मिथ्यात्व संबंधी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ये क्या व्यवहार नहीं? मिथ्यात्व की तरफ नहीं जा रहे हैं और सम्यक्त्व में प्रतिष्ठित हैं। प्रवृत्ति में मिथ्यात्व से बच रहे हैं, अनायतनों से बच रहे हैं और आयतन की संगति में रह रहे हैं। गलत व्यवहार छोड़ा है, सही व्यवहार अपनाया है, ये सम्यक दर्शन है। तो ये सम्यक दर्शन भी व्यवहार है। सम्यक ज्ञान भी व्यवहार है। ये सम्यक ज्ञान जो हम दे रहे हैं, इसका आदान प्रदान हो रहा है, आप ले रहे हैं, ये लेन देन जिस ज्ञान का होता है, ये व्यवहार ज्ञान है कि निश्चय ज्ञान है? व्यवहार ज्ञान है। इससे मोक्ष है क्या? नहीं है। पर इसके बिना भी मोक्ष नहीं है। व्यवहार ज्ञान भी आवश्यक, और इस व्यवहार ज्ञान से पहले हमारा ज्ञान गलत व्यवहार ज्ञान था, वो मिथ्या ज्ञान था। मिथ्या ज्ञान को ही पलटाने के लिए व्यवहार ज्ञान, सम्यक ज्ञान आवश्यक है, और ये सम्यक ज्ञान आए बिना निश्चय ज्ञान आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसलिए कहा महावीर भगवान ने, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन तीनों को जो व्यवहार रूप है, इनको धारण किए बिना आत्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता, आत्मानुभूति नहीं हो सकती। आजकल पंचम काल में कुछ भव्य जीव ऐसे हैं, भव्य हैं वो, भव्य जीव ऐसे हैं, मुमुक्षु कहलाते हैं, मोक्ष की चाह रखते हैं, इसलिए मोक्षम इच्छति इति मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा करे उसका नाम मुमुक्षु जीव। मुमुक्षु बनना बहुत अच्छा, लेकिन विवेक के साथ मुमुक्षु बनेंगे तो मोक्ष मिलेगा, विवेक नहीं रहा तो मोक्ष नहीं मिल सकता। उनमें विवेक नहीं है, भव्य हैं, मुमुक्षु हैं, मोक्ष ही चाहते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तत्पर रहते हैं, लेकिन मुमुक्षु नहीं है, विवेक नहीं है। तो विवेक क्या, तो वो कहते हैं व्यवहार के बिना ही मोक्ष होता है। देखो अब व्यवहार दो प्रकार का, एक मिथ्या व्यवहार, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये मिथ्या व्यवहार कहलाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक व्यवहार कहलाता है, और इसी के माध्यम से निश्चय को साधा जाता है, साधना की जाती है, प्राप्त किया जाता है, उसी के माध्यम से निश्चय को पाना होता है। वो कहते हैं व्यवहार के बिना मोक्ष हो जाता है। तो कैसे व्यवहार के बिना, तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दो ही पर्याप्त हैं, संयम जरूरत नहीं, मुनि बनना जरूरत नहीं, मुनियों को मानना जरूरत नहीं, दिगंबरों को मानना जरूरत नहीं, बनना भी जरूरत नहीं, मानना भी जरूरत नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है तो मोक्ष हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब दो से मोक्ष मानना, ये अज्ञान है कि ज्ञान है, विवेक है कि अविवेक है? अविवेक है। अब उनको पंचम काल में तो मुनि दिखते ही नहीं है, पंचम काल में मुनि हो ही नहीं सकते। बन नहीं सकते कहते हैं, निर्दोष बन नहीं सकते, यानी सदोष बन सकते। तो सदोष, सदोष मुनि मोक्ष नहीं जाता, निर्दोष मुनि मोक्ष जाते हैं। तो सदोष और निर्दोष किस मामले में, सदोष और निर्दोष किस मामले में, सम्यक दर्शन में या ज्ञान में या चारित्र में? सदोषपना किस में? चारित्र में। तो सदोषपना चारित्र में कहां कहां आता है, ये संशोधन करना है, और उसमें असल में सदोषपना है तो उसको त्यागना भी है। और पंचम काल में ये कोई बड़ी बात नहीं है, संयम यानी चारित्र, चारित्र के दोष क्या और चारित्र के निर्दोषता क्या, इसका अध्ययन करके निर्दोष हम उसमें बन सकते हैं क्या नहीं, उस चारित्र को हम धारण कर सकते हैं क्या नहीं, ये विचार करके अपनी शक्ति को नाप नहीं सकते। यदि बिल्कुल ही असंभव हो, जैसे मोक्ष की तरह, आज पंचम काल में मोक्ष नहीं, ये तो हम डंके की चोट के साथ कह सकते हैं कि मोक्ष मिलेगा नहीं, तो ठीक है, भगवान भी कह रहे हैं और अपन भी ताकत लगाएं, अनुभव से देखें, प्रैक्टिकल करके देखें तो मोक्ष मिलता नहीं है। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, कारण ये है कि मोक्ष के लायक शरीर उपलब्ध नहीं होता, मजबूत शरीर जिसको चाहिए कर्म नाश करने योग्य, वो ताकत वाला शरीर पंचम काल में किसी भी मनुष्य को मिलता नहीं है, इसलिए मोक्ष तो नहीं होगा। किंतु मोक्ष मार्ग भी प्राप्त नहीं होगा, ऐसा है क्या? मार्ग तो है, मंजिल भले ही ना हो लेकिन मार्ग तो है। अब वो मार्ग भी नहीं है ये सिद्ध करते, मुनि हो ही नहीं सकते, इसका मतलब क्या हो गया? दो ही बच गए, अब चारित्र का अभाव हो गया। चारित्रवान बन ही नहीं सकते ये धारणा बना ली जाए तो मार्ग का अभाव है, और बचा क्या फिर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, बस यही बच गए। अब ये चारित्र हो सकता है, हो सकते, हो सकने की संभावना होते हुए भी इसको नहीं हो सकता ऐसा कहना, ये अविवेक होगा ना। धारणा ही बना लिया कि मुनि मार्ग आज है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, तो कैसे नहीं हो सकते? इसकी भी चर्चा है आगम में, हो सकता है कि नहीं हो सकता। आगम में तो लिखा नहीं है कि आज मार्ग भी नहीं हो सकता और मोक्ष भी नहीं हो सकता, ये तो लिखा है मोक्ष नहीं हो सकता, ये आगम भी कहता है, क्योंकि आज वो शरीर नहीं है। पर मार्ग भी नहीं हो सकता, मार्ग को कोई धारण नहीं कर सकता, ऐसा होता तो फिर शास्त्र की क्या जरूरत थी? आचार्यों ने शास्त्र लिख करके रखा कि मार्ग पर चलने वालों को ही तो रखा ना। और शांति सागर महाराज ने अंतिम समय तक कहा, देहू न कहा, वहां पर बोर्ड पर है जड़पड़ लो उपदेश उनका, संयम धारण करा, देहू न कहा संयम धारण करा, बाबा नो कहा उन्होंने,
आत्मचिंतन करा, पांच मिनट करा,
उन्होंने ऐसा कहा और संबोधा, देहू न कहा संयम धारण करा, बाबा नो कहा, और इन्होंने कहा ऐसा कुछ मत कहा, ऐसा मुझ दबानो कहा इन्होंने, उन्होंने बाबानो कहा और इन्होंने कहा दबानो, ज्यादा मत दबाओ हमको संयम धारण करने के लिए। इस संयम से दूर होते चले गए और संयम धारण करके वो पार हो गए। मानोगे कि नहीं कि शांति सागर महाराज संयमी थे, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र उनमें था, मानोगे? मानना तो पड़ेगा। उनमें ये नहीं मानोगे, उनमें दो ही थे ये मानोगे, तो दूध को भी तुम जहर कह रहे हो, पाप है। दूध को जहर कहना पाप है? एक व्यक्ति दूध पी रहा है और व्यर्थ रूप से आप उनको ये कह रहे हैं कि वो जहर पी रहा, तो ऐसा क्यों होता है? जीव को इसलिए होता है, जीव को एक आग्रह आता है, एक आदत, वो आदत के वशीभूत हो जाता है, वो उसको संयम अच्छा नहीं लगता, उसको विषय कषाय अच्छे लगते हैं, और जिस जिसको विषय कषाय अच्छे लगते हैं और वही वही लोग मिल गया और उनका एक ग्रुप तैयार हो गया, एक वर्ग खड़ा हो गया, तो वर्ग ये कहता है कि देखो हम बहुमत में हैं, तुम मानो तो सही, इतने लोग मिल करके कह रहे हैं आज संयमी नहीं होते, संयम नहीं होता, मुनि नहीं होते, मुनि मार्ग नहीं होता, और मुनि हुए बिना मार्ग भी नहीं होता। मार्ग का मतलब क्या? आत्मा कोई भी इस वक्त संयम को धारण कर ले तो मार्ग की उत्पत्ति हो गई। मार्ग आत्मा को छोड़ करके नहीं, न धर्मो धार्मिकैर विना, धर्म धर्मात्मा को छोड़ करके रहता है क्या, रह सकता है क्या? तो किसी न किसी एक को धर्मात्मा बनना ही पड़ेगा, तब मार्ग का साक्षात्कार होगा। मार्ग शास्त्र में होता है क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र लिखा तो है, यही मार्ग है, तीनों लिखा है, दो अगर लिखते तो मार्ग ना होता, तीनों तीनों भी लिखा है, इसलिए मार्ग है। तो शास्त्र में मार्ग नहीं है, शास्त्र में मार्ग की उत्पत्ति का विषय लिखा हुआ है। आयुर्वेदिक पुस्तक में आयुर्वेदिक दवाई नहीं है, दवाई को तैयार करनी पड़ेगी, पुस्तक में मोक्ष मार्ग नहीं होता, शास्त्र में मोक्ष मार्ग नहीं होता। शास्त्र में तो मोक्ष मार्ग कैसे बनाना संकेत है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में दवाई कौन कौन सी मिलाने पर किस रोग के निवारण की दवाई बनती है लिखा है, क्या दवाई है उसमें? दवाई को तो लानी पड़ेगी। यहाँ जो लिखा है उन दवाइयों को ला करके मिला करके कूट करके तैयार करके तुमको क्या रोग हो गया है, हाँ ये रोग है, हाँ ये ले लो ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो गया, दवाई के अनुसार औषधि तैयार करने से और उसको खाने से ठीक तो हो गया। अब कोई कहे लिखा तो है लेकिन आज दवाई बन ही नहीं सकती, दवाई बन ही नहीं सकती, दवाई बना ही नहीं सकते, उसको खा ही नहीं सकते, ऐसा कहते रहेंगे तो शास्त्र व्यर्थ हो गए कि नहीं? दवाई के शास्त्र अगर दिगंबरत्व को नहीं मानेंगे, संयमियों को नहीं मानेंगे और संयमियों को देख करके भी ये संयम है नहीं कहेंगे, तो फिर शास्त्र किस काम का है? अनुपयोगी हो गया। शास्त्र के आधार से ही तो हम रत्नत्रय धारण कर रहे हैं, इसमें अतिचार अनाचार सब का वर्णन है, लिखा हुआ है। अतिचार लग गए तो क्या करना, अनाचार लग गए तो क्या करना, ये भी लिखा है। तो अतिचार के लिए प्रतिक्रमण, प्रायश्चित सभी बताया है। और वह व्यक्ति अविवेकी वो देखता है अतिचार को, देखेगा किसी मुनि के पास और कहेगा देखो अतिचार है, आज संयमी है ही नहीं, आज संयमी है ही नहीं, और ऐसा निर्दोष संयम धारण करना संभव नहीं, ये कहता है वो। तो क्या छठे गुणस्थान में अतिचार अनाचार वगैरह नहीं लगते होंगे मुनियों को? क्या बिल्कुल निर्दोष ही रहते होंगे? तीर्थंकरों को भी दीक्षा लेने के बाद छठे सप्तम में गिरना उठना पड़ा, हजारों बार होता है अंतर्मूर्त के भीतर, हजारों बार छठा सप्तम गुणस्थान होता है, तीर्थंकरों को भी गिरना उठना पड़ा। छठे गुणस्थान में अतिचार भी है तो अनाचार भी, अनाचार हो जाए तो नीचे आता है, अतिचार हो जाए तो वहीं टिकता है, और फिर प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर ले तो वहां बना रहता है, ये तो मार्ग है। लेकिन प्रमादी व्यक्ति ये कहता है मुझे तो धारण नहीं करना है, और कोई धारण कर रहा है तो उसको भी ये कहना है कि आज मोक्ष मार्ग नहीं, मुनि नहीं, ये बनो मत, स्वाध्याय करो, ध्यान करो और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दो ले लो और आराम से रहो, ऐसा भी एक मार्ग निकला है। उसको कौन सा पंथ कहते मालूम? ये इसी का नाम कांची पंथ। लोगों को कांची पंथ का भी स्वरूप मालूम नहीं है और कोई अन्य पंथ का भी मालूम नहीं, और पंथ पंथ को भूत बना करके अशांति करके बैठ जाते हैं और धर्म छोड़ के बैठ जाते हैं। कांची पंथ का अर्थ यह है कि दिगंबरत्व को मानते ही नहीं, पंचम काल में दिगंबर बनना भी नहीं चाहते, अब दिगंबर जो हैं उनको मानना भी नहीं चाहते, इसका नाम है कांजी पंथ। ये ठीक है कि जैन धर्म के सारे शास्त्र भी ये मानते हैं कि भ्रष्टाचारी मुनि को मत मानो, शांति सागर जी ने भी कहा उपदेशों में शीतलाचारी मुनि की उपेक्षा करो, उसको मत मानो, उन्होंने भी कहा। और कांजी पंथ वाले भी कहते हैं कि मुनि को मत मानो, लेकिन ये नहीं कहते कि शीतलाचार मुक्त मुनि को मानो और शीतलाचार से सहित मुनि को मत मानो, ऐसा कहते हैं तो शांति सागर जैसे होती है। इनका कथन है क्या, मुनि मात्र को मत मानो, मुनि बनना आज संभव ही नहीं, धीरे से समझाते हैं, मुनि बनना आज संभव नहीं। आप देखो तो सही, किसी की मुनि के पास जाओ वहां देखो कितना गड़बड़ है। तो एक शीतलाचार्य मुनि को दिखाएंगे और उससे क्या समझाएंगे, देखो वो ऐसे हैं, सभी ऐसे ही हैं, अच्छे मुनियों से भी छुड़ा देंगे, अच्छे मुनियों के सहवास भी छुड़ाएंगे और बुरे मुनियों के सहवास भी छुड़ाएंगे, दोनों से छुड़ाएंगे। और खुद अपनी परंपरा में मुनि बनने का कोई लक्ष्य इनका है नहीं, एक भी साहसी कोई नहीं बना आज तक उस वर्ग में जो शांति सागर जी जैसे साहसी बन करके संयम को धारण कर ले। ये वर्ग क्या चाहता है? ये चाहता है शीतलाचार, ये चाहता है श्रमण संस्कृति की जड़े ही उखाड़ रहा है, ये और खतरनाक है, धर्म की जड़े ही उखाड़ रहा है। और एक चाहता है शीतलाचार नहीं छोड़ना, मंत्र तंत्र नहीं छोड़ना, परिग्रह नहीं छोड़ना और उसी अवस्था में अपने आप को श्रमण घोषित करना, मान्यता हासिल करना। ये दोनों पंथ हैं। एक शीतलाचार में मुनि अवस्था बनाए रखना चाहता है और एक चाहता है किसी को मानना ही नहीं। ये दोनों ही मूर्ख हैं, आत्मकल्याण नहीं जानते, ये दोनों पंथ मूर्ख हैं। एक रूढ़िवादी है, एक परंपरावादी है, एक शीतलाचारी है, शीतलाचार को ही धर्म मानता है, धर्म के नाम से ही चलना चाहता है, इसमें भी मूर्खता। और एक ये कह रहा है कि शीतलाचार मुक्त आचरण हो ही नहीं सकता, निर्धारण करके बैठ गए। फिर धर्म बचा कहां? रत्नत्रय स्वरूप धर्म, धर्म की उत्पत्ति है कहां? धर्म का अभाव हो गया, तीर्थ का अभाव हो गया, इन दोनों में तीर्थ नहीं है। इनको शीतलाचार मुक्त आचरण पर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, उसके आचरण के प्रति कोई समर्पण भाव नहीं। और इसको रत्नत्रय के प्रति कोई जिज्ञासा ही नहीं, केवल कथन में कथन ही करना चाहता, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक चारित्र, इससे मोक्ष मार्ग है, बस कथन ही करते जाओ, आयुर्वेदिक शास्त्र ही पढ़ते जाओ, ये दवाई है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, उसको खाओ नहीं, रोग हो गया और रोगी हैं सभी, ये सब रोगी ही हैं, लेकिन दवाई का केवल नाम लेते हैं, दवाई खा करके रोग को दूर करना नहीं चाहते, यानी प्रमादी हैं। दवाई के कथन में रोग ठीक होता है या दवाई को खाने से रोग ठीक होता है? कोई कांजीपंथी तो दवाई का कथन करता है केवल, दवाई खाता नहीं,
सूर्योदय भी उठता नहीं।
हाँ,
सूर्योदय होता है क्या? ऐसे
तुम
तैयार हो जाएगा, सूर्योदय हो गए क्या? नहीं,
बिल्कुल
ऐसी तैयार किए नहीं उन्होंने
किया।
हाँ, ये सूर्योदय होता है, धर्म धर्म कभी उठता नहीं।
हाँ, यही तो अपने को पंथ को भी समझना है, धर्म को भी समझना है और अपने जीवन को धर्म की ओर उन्मुख करना है। धर्म को समझकर धर्म को विवेक से अपने को ग्रहण करना है, ये रास्ता आत्मकल्याण का है। इस रास्ते को पंथवादी छोड़ देता है और ज्ञानवादी धर्मवादी ग्रहण करता है। तो पंथ धर्म नहीं है, पंथों में धर्म नहीं होता, विवेक से अपने आत्मकल्याण का मार्ग जितना होता है उतना निर्दोष ग्रहण करना, आचरण करना और चलना, इसमें धर्म है। सावधान रहो पंथों से, पंथ का कोई महत्व नहीं धर्म के क्षेत्र में। हमको धर्मवादी बनना है, पंथवादी नहीं बनना है। समय हो गया है, ये हमारी जैन परंपरा में ये कहा है, पांच परमिष्टि और नौ देवता हैं। पांच परमिष्टि और नौ देवता कौन कौन से हैं? नौ देवता अरहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, चैत्यालय, ये नौ वंदनीय हैं। नमोस्तु कहा जा सकता है नौ को। अभी तक तो हमने कहा था पांच को ही नमन करना, पर ये चार जो आ गए ये भी वंदनीय हैं। तो ये नमोकार मंत्र में नहीं है, क्यों नहीं आए, ये प्रश्न आपको उत्पन्न हो सकता है। ये प्रश्न ऐसा ही रखो, नमोकार मंत्र में नौ पद क्यों नहीं है अगर वंदनी है तो। अभी तक तो आपने कहा पांच ही वंदनी, छठा कोई है ही नहीं, है नहीं, है नहीं, बहुत दिमाग बिगाड़ दिया हमारा। और यहाँ पर नौ भी वंदनी कह रहे हैं, ये क्या मामला है, कल इस विषय को समझाएंगे। प्रभु देव तुम्हारे